हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। श्लोक संख्या 21। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सुप्त गोस्वामी भगवान के 70वें अवतार अर्थात वेद व्यास के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, ततः सप्तदशी जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्री वेदतरुशाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रीवीदतरुशाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रीवेदतरुशाखा 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 दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। शब्दों का अर्थ ततः यानी तत्पश्चात यानी 16वां हो गया उसके बाद। सप्तदशे सप्त अर्थात सात, दशमना 10 10+7 70वां अवतार। जातः उत्पन्न हुआ कहाँ पर? सत्यवत्यां पराशरात् सत्यवती के घर से पराशर मुनि के द्वारा। और क्या किया उन्होंने? चक्रे तैयार किया। क्या? वेद तरो। तारा किसको कहते? तरो वृक्ष को कहते हैं। जैसे हम बोलते तरो रिवा सहसुनो न, ऐसे बोलते ना तरो। और वेद का जो वृक्ष है वेद के काल वृक्ष को शाखाएं तैयार की उसकी, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया विभाजन किया। और दृष्ट्वा क्यों किया? देख कर। दृष्ट्वा मतलब देख कर। पुंसोऽल्पमेधसः, पुंसो मतलब सामान्य जन, जैसे कलयुग के जीव जो बहुत ही अल्प मेधसा, उनकी बुद्धि इतनी थोड़ी है कि वो इतने गंभीर वेद के भाष्य को सही तरह से समझ नहीं सकेंगे, ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान ने यह अवतार लिया और वेद के कल्प वृक्ष की शाखाएं बनाई, यानी कि उसका विभाजन किया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद तत्पश्चात 70वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वेद मूलतः वेद एक है, किंतु श्री वेद व्यास जी ने उसे चार में, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में बांट दिया और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाष्य तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप से ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु आधुनिक कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से पूर्ण है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाले संतान भी शूद्रों या स्त्रियों से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं होते। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह आशा की जाती है कि वे संस्कृत शुद्धिकरण प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु आधुनिक युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी संस्कृत नहीं रह सकते। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री वेद व्यास जी ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञ जनों के को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति येष्टवे वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतिनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशास्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम् ग्रन्थराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला सेक्शन तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 21। अत्यंत ही सुंदर आज हम वेद व्यास जी के विषय में पढ़ रहे हैं और सूत गोस्वामी आज 88,000 ऋषियों को भगवान के उस अवतार के विषय में बता रहे हैं जो कि भगवान के 70वें अवतार हैं। और वो कहाँ से आए वो कहते हैं ततः सप्तदशो जातः सत्यवत्यां पराशर कि वो सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा उनका जन्म हुआ। और उन्होंने क्या किया कलयुग के लोग जो कि बहुत ज्यादा क्या लिखा दृष्ट्वा पुंसोल पमेदस जो बहुत अल्पमेदस है बहुत ही कम बुद्धि वाले हैं उन पर बड़ी कृपा की उन्होंने और उन्होंने किया चक्रे वेद तरु शाखा उन्होंने वेद के तरु यानी वेद के वृक्ष की शाखाएं यानी वेद के वृक्ष का विभाजन किया। क्यों किया क्योंकि श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग के प्राणी बहुत ज्यादा बुद्धिहीन है ना केवल शूद्र स्त्रियां और क्षत्रिय और वैश्य बल्कि जो ब्राह्मण संप्रदाय में भी उत्पन्न होते हैं उनके अंदर भी इतना ज्ञान नहीं है कि वो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वेदों को समझ सके। तो भगवान बड़े कृपालु हैं क्योंकि जब तक जीव शास्त्र को वेद को नहीं समझेगा तब तक भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा वो भौतिक जीवन में ही लगा रहेगा और कभी भी अपने वास्तविक जीवन तक जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए वेद व्यास जी ने बहुत ही कृपा की जीवों पर खासतौर पर कलयुग के जीवों पर के वेदों का विभाजन किया। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि पहले केवल एक वेद था पहले यजुर्वेद के नाम से फिर वेद व्यास जी ने उनको चार वेदों में विभाजित किया और इतना सुलभ करके, व्यास का मतलब होता है बहुत बड़े विस्तार में व्याख्या। वैसे व्यास का मतलब विभाजन करने वाला भी होता है, लेकिन व्यास का मेन यहाँ पर मतलब बताया कि एक छोटे से वेद को उन्होंने इतना अच्छे तरीके से विभाजित करके बताया और लोगों, ताकि लोगों को ये आसानी से समझ में आ सके। ये वेद व्यास भी एक पोस्ट होती है हर द्वापर के अंत में, यानी कि द्वापर की तीसरी संध्या, जैसे ऐसे एक युग को तीन संध्याओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रथम संध्या, द्वितीय संध्या और तृतीय संध्या, यानी अंतिम जो छोर होता है एक युग का, उसको तृतीय संध्या कहा जाता है। और हर द्वापर की तृतीय संध्या में वेद व्यास जी का अवतार होता है, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आने वाला होता है और कलयुग के लोगों की मति इतनी मंद होती है कि वो वेदों को डायरेक्ट से ग्रहण नहीं कर सकते, श्रुति मतलब वो श्रुतिवान नहीं होते हैं, वो सुनकर वेदों को नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले, कलयुग से पहले वेद सुनकर, एक गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर उसको है ना ग्रहण किया जाता है, लेकिन कलयुग के प्राणी इतने, उनकी बुद्धि इतनी कम होती है कि वो नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 मनमंत्र होते हैं और अभी जो चल रहा है 7वां मनमंत्र चल रहा है, जिसका नाम है वायवस्वत मनु, और अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। इसका मतलब है इससे पहले 27 चतुर्युग हो चुके हैं हमारे इस मनु में, पहले 27 चतुर्युग हो चुके हैं। अब हर युग के द्वापर के एंड में एक वेद व्यास जी आते हैं, यानी कि हमारे इस मनमंत्र में पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं। इस मनमंत्र के जो सबसे पहले वेद व्यास थे ना, वो ब्रह्मा थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी को है ना वेद व्यास जी बनाया जाता है, क्योंकि कोई योग्य नहीं होता है, कभी कभी इंद्र बनता है, कभी कभी भगवान स्वयं वेद व्यास जी शक्ति आविष्कार के रूप में आते हैं। तो हमारे इस मनमंत्र में पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं, इसमें एक बार ब्रह्मा बने, एक बार इंद्र बने, एक बार भारद्वाज बने, एक बार सूर्य बने, और अभी जो हमारे वेद व्यास जी हैं, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, यानी कि वेद व्यास जी हैं, वो वेद व्यास जी इसलिए उनका नाम है क्योंकि वेदों का विभाजन किया, परंतु इनका नाम असल में क्या है, कृष्ण द्वैपायन, या इनको बादरायन भी कहते हैं, क्योंकि बेर के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था। और कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा जाता है, अभी हम उसके विषय में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ। एक कन्या थी सत्यवती, उसका पिता मांझी था, यानी कि जो लोग आते थे उनको उसमें केवट था, उसको नदी कश्ती में बिठा के नदी पार करवाते थे, परंतु एक समय उसके पिता की है ना वो थोड़े अस्वस्थ थे, तो उसकी बदली में अपनी बेटी सत्यवती को कहा कि आज आप है ना यात्रियों को नदी पार करवाना। सत्यवती का नाम मत्स्य गंधा भी था, मत्स्य कहते हैं मछली को, गंधा कहते हैं सुगंध या दुर्गंध, मतलब मछली की गंध उसके शरीर में से आती थी, इसलिए उसको मत्स्य गंधा कहा जाता था। तो जिस दिन उसके पिता नहीं आए थे, उस दिन वो अकेले आई थी और सब यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ रहे थे। भगवान की योजना से उसी दिन पराशर मुनि उस वहां पर आए और सत्यवती यानी मत्स्यगंधा को बोला कि मुझे उस किनारे पर जाना है। जब सत्यवती ने ऋषि को अपनी नाव में बिठाया तो पराशर मुनि मत्स्यगंधा की ओर आकर्षित हो गए और भगवान की योजना से गंधर्व विवाह करके उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम वेदव्यास भी था, परंतु पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को ये आशीर्वाद दिया कि आप कन्या ही रहोगी और ये जो पुत्र है वो महाविद्वान बनेगा और विशाल कार्य करेगा। आधुनिक काल में हमारी बुद्धि इतनी अपवित्र है कि इस तरह के वाक्यों को सुनने के बाद संभावना है कि हम, क्योंकि इसको गलत तरीके से भी कुछ लोग समझ सकते हैं कि भाई पराशर मुनि ने ऐसा कैसे कर दिया और वो है ना उनसे संतान उत्पन्न कैसे करा सकते, परंतु हमें ये समझना है कि शास्त्र में जो लिखा होता है वो उस वो एक योजना होती है। हो सकता है इसके पीछे भी कई जन्मों के कारण होते हैं जो कि हमें डिटेल से पीछे वाले पता नहीं होते हैं, तो हमारे मन में आशंकाएं आ सकती हैं। परंतु पराशर मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। कई पुराणों में, विष्णु पुराण में उनके बहुत सारे श्लोक आते हैं और उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान विज्ञान ज्ञान वैराग्य च एव षडनाम भग इति कण। भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में उन्होंने बताया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, परंतु आज के बुद्धिहीन व्यक्ति कहते कि भाई पराशर मुनि ने भी ऐसा किया था तो हम भी कर सकते हैं, परंतु उनको ऐसे कहा जा सकता है कि पराशर मुनि का पुत्र वेदव्यास जी था, परंतु आप यदि ऐसा करते हो तो आपको भगवान, और ये जो कार्य हो रहा है वो भगवान की योजना से हो रहा है। तो हमारी मंद बुद्धि इस तरह के तर्क कर सकती है आज के लोगों की, लेकिन पराशर मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और ये जो हुआ वो सब भगवान की योजना से हुआ, हमें ये समझकर शास्त्र की बात को समझना चाहिए। पराशर मुनि ने यमुना के तट पर उसी समय एक द्वीप तैयार किया, द्वीप बना एक ऐसे तैयार किया जगह जहाँ पर उसी समय सत्यवती से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और उस समय पराशर मुनि ने सत्यवती को, जिसका नाम मत्स्यगंधा था, उनको ये आशीर्वाद दिया कि अब आपके शरीर से मत्स्य की गंध नहीं आएगी बल्कि कस्तूरी की गंध आएगी, इसलिए आज से आपका नाम कस्तूरी गंधा है। तो उनका नाम कस्तूरी गंधा भी रखा, परंतु सत्यवती के नाम से उनको जाना जाता था। जैसे ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ, वो उसी समय बड़े हुए, यानी कि ऐसा नहीं छोटे बच्चे थे, उसी समय बड़े हो गए, अपनी माता को प्रणाम किया और उसी समय आज्ञा ली कि माता अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, अगर कभी भविष्य में आपको मेरी आवश्यकता हुई तो आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा, परंतु मैं आपके पास रह नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत सारी तपस्या करनी है। तो उस समय क्योंकि वेदव्यास जी ने वहां पर नदी के किनारे पर द्वीप बनाया था, इसलिए द्वीप पर पैदा होने के बाद उनको कहा द्वैपायन कहा गया, और उनका कलर क्योंकि सांवला था इसलिए उनको कहा जाता था कृष्ण द्वैपायन, और वेदव्यास जी इसलिए क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया। कई वर्ष बीतने के बाद अब वो तपस्या करने के लिए चले गए, और बहुत सारे वर्षों के बाद जब द्वापर युग आया तो महाराजा शांतनु जब नदी के किनारे पर गए और उनको है ना सत्यवती से जब उनकी भेंट हुई, तो सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु सत्यवती के पिता ने कहा कि मेरी एक शर्त है, यदि सत्यवती के पुत्र को राज्य मिलेगा तो ही मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा। और फिर जब देवव्रत को, यानी कि महाराजा शांतनु की जो पहली संतान जो कि गंगा माता से उत्पन्न हुई थी, उनको जब ये पता चला कि मेरे पिता को सत्यवती से विवाह करना है, तो सत्यवती के पिताजी से जाके कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही राज्य करेगा। परंतु उनके पिता ने कहा कि ये तो आप कह रहे हो, फिर तुम्हारे पुत्र आएंगे तो वो तो तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा पराक्रमी होंगे और वो सत्यवती के पुत्रों को है ना राज करने नहीं देंगे। उस समय देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, और इतना ही नहीं जो भी इस राज्य यानी हस्तिनापुर का जो राजा बनेगा उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जब सत्यवती के पिता ने ये प्रतिज्ञा सुनी उसके बाद इस प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत का नाम पितामह भीष्म पितामह, क्योंकि ये बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा थी कि वो अब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे, वंश भी नहीं होगा, तो फिर इनको भीष्म के नाम से जाना जाता था। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और शांतनु के दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। परंतु दोनों पुत्रों का देहांत हो गया तो इनकी जो माता थी यानी सत्यवती वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि अब मेरे दोनों पुत्र जो हैं उनको कोई संतान नहीं है तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा और राज कौन करेगा। तो उस समय सत्यवती ने वेदव्यास जी का स्मरण किया और उनको निवेदन किया कि मेरी पुत्र वधु जो है उनको कोई संतान नहीं है। तो उस समय ऐसा होता था कि यदि कुल का मतलब किसी का पति का डेथ हो जाती थी तो उसके जो ज्येष्ठ थे उससे भी संतान उत्पत्ति करा के कुल को आगे बढ़ाया जाता था। परंतु ऐसा कलयुग में नहीं होता, ये कलयुग में वर्जित है, ये द्वापर युग तक होता था, क्योंकि उस समय मन में एक ही आशा होती थी कि कुल को बरकरार रखना है। लेकिन आजकल कलयुग के लोग की बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है, इसलिए ये अब देवर से पुत्र उत्पत्ति का जो ये रीति थी वो बिल्कुल मना है इस कलयुग में। लेकिन उस समय सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास जी से निवेदन किया, परंतु वेदव्यास जी के इतने सालों तक तपस्या करके आए थे तो जब उनकी पहली पुत्र वधु अंबा के पास गए, अंबिका के पास गए, तो उस समय अंबिका ने आंखें बंद कर ली क्योंकि वेदव्यास जी इतने सालों तक तपस्या करके आए थे तो बहुत भयानक शक्ल हो गई थी, क्योंकि कभी सैलून में नहीं गए थे और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, उनको देखकर वो डर गई और आंखें बंद कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए जो कि जन्म से अंधे थे। परंतु सत्यवती ने कहा बेटा इस तरह ये अंधा है, नेत्रहीन है, तो राज्य कैसे करेगा? आप मेरी दूसरी पुत्र वधु को भी पुत्र संतान प्राप्त कराओ। उसके बाद जब अंबालिका के पास वेदव्यास जी गए तो उनको पांडव पुत्र उत्पन्न हुए, यानी कि उन्होंने नेत्र बंद नहीं किए परंतु वो भी कांप गई थी, डर गई थी, इसलिए पांडव जो थे वो भी शरीर से हमेशा रोगी रहते थे और है ना स्वस्थ नहीं रहते थे। उसके बाद दासी, इन दोनों की दासी थी यानी अंबिका और अंबालिका की दासी थी, उनके साथ वेदव्यास जी का संयोग हुआ और उनको विदुर उत्पन्न हुए संतान के रूप में। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर जी ये तीनों के पिता वेदव्यास जी हैं। और इसके बाद समय समय पर धृतराष्ट्र और पांडव क्योंकि उनके पुत्र थे तो अक्सर आते थे और उनको आशीर्वाद देते थे, कोई भी उनका कार्य होता था उसमें उनको सहायता करते थे। और धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के साथ जब धृतराष्ट्र बड़े हो गए थे, गांधारी के साथ जब उनका विवाह हुआ तो वेदव्यास जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको 100 पुत्र होंगे। परंतु समय होने के बाद जब पुत्र नहीं उत्पन्न हुए, गांधारी को एक मांस का बड़ा सा पिंड उत्पन्न हुआ तो वो बहुत रो रही थी कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो परंतु मुझे 100 पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, ये तो मांस का पिंड उत्पन्न हुआ है। तो फिर वेद व्यास जी ने उसके 100 टुकड़े कर दिए, यहाँ पर भी व्यास मतलब विभाजन किया और फिर इस तरह से 100 टुकड़े करके जब उनको बाद में अलग अलग मटकों में रखा गया और फिर इस तरह उनके 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई धृतराष्ट्र और गांधारी की। उसके बाद वन में पांडव चले गए थे और वन में ही उनको श्राप मिला था, पांडवों का जन्म हुआ और पांडवों के जन्म के बाद श्राप के कारण, क्योंकि पांडव एक बार जा रहे थे और एक ऋषि और उनकी पत्नी हिरण के वेश में संभोग कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये जो हमारा ऋषि वाला स्वरूप है, शरीर है, उसमें हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हिरण के स्वरूप में वो संभोग कर रहे थे, परंतु पांडवों ने पांडव जो थे उसने इनको हिरण समझा और शिकार किया। तो फिर है ना वो दोनों अपने असली स्वरूप में आ गए और उनको श्राप दिया कि जब भी तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समय बीता और एक दिन पांडव राजा अपनी पत्नी माधुरी के साथ है ना संभोग करने की इच्छा के से जब उनके करीब आए तो पांडव की मृत्यु हो गई और इस प्रकार पांचों पांडव अनाथ हो गए। और वेदव्यास जी हमेशा आते थे, तक पर उनकी सहायता करते थे। और जब पांचों पांडवों की युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की का विवाह जब द्रौपदी के साथ हुआ, एक बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया। तभी भी वेदव्यास जी ने आकर उनको बताया कि इसका कारण क्या है कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने ऐसा ही पति चाहा था जिसके अंदर ये सारी गुण हो और एक में संभव नहीं थे, इसलिए पांच पति और के रूप में आपको ये मिले हैं। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने तब की जब पांडव का तिरोभा हो गया था। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो तो हर समय वहां पर नहीं होते थे तो उनको सारी चीजें कैसे पता चली। इसका उत्तर भगवत गीता में संजय देते हैं। भगवत गीता में संजय कहते हैं, व्यास प्रसाद श्रुतवान, कि मैंने जो कुछ भी सुना है वो उसकी इसलिए सुना है क्योंकि मेरे गुरु महाराज वेदव्यास जी की मेरे पर कृपा हुई है। वेदव्यास जी की कृपा से मैंने क्या सुना, योगम योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कथयस्त स्वयं, के साक्षात योगेश्वर कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे थे, लेकिन मेरे गुरु महाराज वेदव्यास जी ने मेरे पर इतनी अनुकंपा की कि मैं यहाँ पर हस्तिनापुर में बैठे बैठे वो सब कुछ सुन सका। जब वेदव्यास जी अपने शिष्य को ये दिव्य दृष्टि दे सकते हैं तो क्या वो स्वयं कुरुक्षेत्र का हाल, भगवद गीता और जो रणभूमि में हो रहा है उसका हाल वो नहीं लिख सकते। तो वेदव्यास जी स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, उन्होंने ये सब लिखा। और पांडव जब हिमालय में चले गए थे तब भी महाराज जन्मेजय के साथ हो रहे, यानी वेदव्यास जी की भूमिका को अगर हम देखें कि कितने समय कितने वर्षों की है, जब अना पांडव के पिता, पांडव जी पांच पांडव उनके पिता जो पांडव थे, तब से उससे भी पहले की भूमिका, सत्यवती के विवाह से भी पहले वो है ना उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी सबकी पांडवों की भी सहायता की। उसके बाद पांडवों के पुत्र हुए अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षत के पुत्र हुए जन्मेजय, यानी पौत्र जो थे तब तक की भूमिका है वेदव्यास जी की। परंतु जैसे श्लोक में लिखा हुआ है, वेदव्यास जी का मेन पर्पस यानी कि प्रथम उद्देश्य जो था उनका, भगवान का वेदव्यास जी के अवतार में आने का क्या था, चक्रिवेद तरु शाखा दृष्टा पुंसोल्प मेधसा, के वेदों को विभाजन करना, क्योंकि जीव बहुत ही अल्पमेधस हो गया था, बहुत बुद्धिहीन हो गया कलयुग का जीव, इसलिए वेदों की विस्तार से व्याख्या करना ही उनके आने का मूल कारण। चैतन्य महाप्रभु जब सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ मिले तब उनसे कहा, सर्वभौम भट्टाचार्य को जब उन्होंने वेदों के विषय में और भक्ति के विषय में बहुत कुछ बताया, जब वो भक्त बन गए तब एक बार सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप कुछ हमें वेदांत सूत्र के विषय में बताइए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो अल्पमेधी हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं क्या वेदों की व्याख्या करूंगा। वेदों की व्याख्या तो स्वयं वेदों के रचयिता वेदव्यास जी ने की है। और मायावादी जो हमेशा कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वेदव्यास जी का ऐसा कथन नहीं है। वेदव्यास जी ने कभी भी अपने शास्त्रों में ऐसे नहीं कहा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे रे निस्तार अलागे शूत्र कोयलो व्यास, मायावादी बात से सुनी ले हो गई सर्वनाश, कि जीवों की कृपा के लिए वेद व्यास जी ने स्वयं ही समस्त वेदों का विभाजन किया हुआ है। प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो बोला, आप वेदांत सूत्र के विषय में कुछ बताइए। तभी महाप्रभु ने कहा था कि वेदांत सूत्र, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है, ये बहुत गहरा तात्पर्य है, कोई भी साधारण व्यक्ति उसके विषय में बात नहीं कर सकता। परंतु जब वेद व्यास जी स्वयं वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो कोई भी साधारण व्यक्ति उसको समझ सकता है। महाप्रभु ने बताया कि वेद व्यास जी के गुरु महाराज नारद मुनि हैं, और जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद जी को और वही ज्ञान नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने अपने गुरु नारद से जो ज्ञान प्राप्त किया उस पर खूब विचार किया, चिंतन मनन करके उन्होंने इस ज्ञान का विस्तार किया एक वेद को चार भागों में, और फिर उसके बाद पुराण उपनिषद शास्त्र की रचना की। वेद व्यास का काम था समस्त वेदों के महत्वपूर्ण वचनों का विस्तार करके उनका विभाजन करना। शुरू में वेद लिखित रूप में नहीं होते थे, खाली श्रुति जैसे सुनकर श्रवण करके गुरु शिष्य परंपरा से। पहले केवल एक वेद यजुर्वेद था, फिर उसके बाद चार वेद बनाए, फिर पुराण, फिर सार के रूप में वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र व्याख्या की है। और वेदांत सूत्र की व्याख्या जो है, उन्होंने व्याख्या के तौर पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये ऐसी एक टीका है जो स्वयं वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र के रचयिता ने की है। कोई भी व्यक्ति जब कोई किताब लिखता है उस किताब के विषय में उस लेखक से ज्यादा अच्छी तरह से और कोई नहीं जान सकता। यदि किसी व्यक्ति ने किसी ग्रंथ को लिखा है तो वही अधिक अच्छी तरह से जान सकता है कि वो इस किताब में क्या कहना चाहता है। तो वेद व्यास जी ने सारे वेद लिखे और उसकी टीका के तौर पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, तो वही शख्स वही व्यक्ति बता सकता है कि किस उद्देश्य से मैंने लिखा है, इसके पीछे तात्पर्य क्या है, वही व्यक्ति अच्छी तरह से जानेगा। और जब वही व्यक्ति बताएगा कि ये ग्रंथ मैंने किस उद्देश्य से लिखा है, इसको लिखने का क्या तात्पर्य है, तो हम उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश आनंद सरस्वती से कहा कि आप वेदांत सूत्र को ले रहे हैं और मन माने ढंग से समझ रहे हैं, और मानसिक चिंतन के कारण उसकी गलत व्याख्या हो रही है। परंतु यदि आप वाकई में वेदांत सूत्र को समझना चाहते हैं और ठीक से उसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो वेद व्यास जी की ही टीका को पढ़ना चाहिए, अन्यथा वेदांत सूत्र को समझना असंभव हो जाएगा। और उनकी टीका है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में मूल रूप से हर चीज का वर्णन है जो वेदों में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी की एक अनेक रचनाओं में से चूड़ामणि है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। पहले अनेक शास्त्र, चार वेद, पुराण, महाभारत सब कुछ लिखने के बाद, सारे शास्त्रों का विभाजन करने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। वो निराश होकर बैठ गए और मन असंतुष्ट था, आनंद नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे मैंने इतने सारे वेदों का विभाजन किया, शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, परंतु 17 पुराण और इतने सारे शास्त्र, इतना वेदांत सूत्र की टीका करने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिली, तो वो व्यक्ति जो इन शास्त्रों को पढ़ेगा उन्हें कैसे शांति मिलेगी। वो वेद व्यास जी बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर चिंतित बैठे हुए थे, तो उस समय वेद व्यास जी के गुरु महाराज नारद मुनि का आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने नारद मुनि को देखकर उनको दंडवत प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, उनको आसन पर बिठाया। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी से कहा, क्या आप शरीर और मन को आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य में प्रस्तुत करने से संतुष्ट हैं? ऐसे नारद मुनि मधुर भाषियों में टोक रहे थे अपने शिष्य को। वो कहना चाह रहे थे कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतने सारे वेदों का विभाजन किया, परंतु भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं, उनकी मधुर लीलाओं के विषय में कुछ भी विस्तार से नहीं कहा। कहीं कहीं इधर उधर महाभारत में, पुराणों में कृष्ण की लीलाएं पाई जाती हैं, परंतु वो एकमात्र कृष्ण के ऊपर केंद्रित नहीं है। कृष्ण भी अनेक पात्रों में से एक पात्र की तरह ही दिखाई देते हैं, यानी कि जिस तरह से दूसरे व्यक्तियों की बात हो रही थी उसी तरह से कृष्ण की भी बात बीच में आ जाती थी। एक कृष्ण पर केंद्रित कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए नारद मुनि ने कहा इसी वजह से आपको शांति नहीं मिल रही है। अब आपको चाहिए कि आप स्पष्ट रूप से ये घोषणा कर दें अपने वेदों में, अपने शास्त्र में, कोई एक ऐसा शास्त्र बनाइए जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया जाए कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, और श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का विस्तार से बखान करो। जब तक तुम लोगों को यह सत्य नहीं, इस सत्य से अवगत नहीं कराओगे, तब तक तुम्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जब तुम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का विस्तार से वर्णन करोगे, फिर ही तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। यह भागवत महापुराण में ही आया है, इदं भागवत पुराणं ब्रह्म संहितम, यानी ये भागवतम पुराण भगवान का साक्षात साहित्य रूप में अवतार है। ये भगवान का वांग्मय अवतार साक्षात भगवान ही है। उत्तम श्लोक चरितम, ये भगवान उत्तम श्लोक से जिनकी स्तुति की जाती है ऐसे भगवान का वर्णन करते हैं। और स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परै वीश्वर, कि श्रीमद् भागवतम महापुराण जब साक्षात वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने भी शास्त्र हैं उसमें केतव धर्म है। धर्म प्रोचित काय तवोत्र परमो निर्मत्सरा राम सता, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है उसमें कोई केतव नहीं है, उसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में बताया गया है। और जब तक जीव भगवान को परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं स्वीकार करता, तब तक उसे संतुष्टि नहीं होगी। जीव भगवान का दास है, और श्रीमद् भागवतम महापुराण के अध्ययन से जीव भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करता है। इसलिए जब यह साहित्य हमारे पास है तो फिर और किसी साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेद व्यास जी की रचनाओं को यदि समझना है तो पहले श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझना चाहिए, फिर वेदांत सूत्र, उपनिषद, वेद शास्त्र आदि सब कुछ सरलता से समझ में आ जाएंगे। वेद व्यास जी का भागवतम पुराण भी स्वयं से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि गुरु परंपरा में आए हुए एक कवि की तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि वेद व्यास ही आदि गुरु हैं। गुरु कभी स्वतंत्र नहीं होते, गुरु सदैव परंपरा में, भगवान से परंपरा जो शुरू होती है तो भगवान से गुरु का लिंक होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होता। वेद व्यास जी आदि गुरु हैं, और हम सब जो भी यहाँ पर ना शास्त्र अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हैं। वेद व्यास जी के सिद्धांतों से हटकर गुरु कुछ कह ही नहीं सकते। यदि गुरु कोई पाखंडी है और वो वेद व्यास जी के सिद्धांतों से हटकर कोई बात करता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो मायावादी है, और यदि वो वेद व्यास जी के सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका सिद्धांत सुनने के बाद आपका सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी भाषा सुनने दे होए सर्वनाश, तो वही सिद्धांत हमें प्रस्तुत करना है जो कि वेद व्यास जी ने कहा है। इसीलिए जिस आसन पर बैठकर गुरु कथा करते हैं उसको भी व्यास आसन कहा जाता है। जो भी व्यास आसन पर बैठता है वो वेद व्यास जी का प्रतिनिधि है। केवल वेद व्यास जी के शास्त्र में जैसे कहा गया है वैसे ही गुरु को कहना चाहिए, उसके हटकर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वेद व्यास जी के बताए हुए शास्त्रों को हम वेद व्यास जी की टीका से ही समझ सकते हैं, उनके शब्दों से ही समझ सकते हैं। और वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं 1.2.11 में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कि भगवान को तीन फेजों में जाना जा सकता है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। तो यदि कोई व्यास आसन पर बैठकर कहता है कि भगवान केवल ब्रह्म है और या कहता है कि भगवान केवल निराकार है, तो फिर वो वेद व्यास से हटकर बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर हमारा कभी भी कल्याण नहीं होता। यदि वो जो वेद व्यास व्यास आसन पे बैठा हुआ है वो भगवान के तीनों फेज को समझता है, भगवान को तत्व से समझता है और वेद व्यास जी की व्याख्या करता है, तभी वो गुरु कहलाने के योग्य है। गुरु पूर्णिमा के दिन में वास्तव में वेद व्यास जी की पूजा की जाती है क्योंकि वो आदि गुरु हैं। उनकी कृपा से ही सारे शास्त्र हम सब अल्प बुद्धि जीवों के लिए उपलब्ध है। यदि वेद व्यास जी ने ये कार्य नहीं किया होता तो हमको ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता। और खास करके कलयुग के पतित से पतित जीवों के लिए भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया और ज्ञान को कितना सरल बना के हम सबके लिए प्रस्तुत किया। भगवान कितने कृपालु हैं कि हम जैसे पतित जीवों के लिए वो कलयुग में आते हैं, हम जैसे अपराधियों को भी याद रखते हैं, जबकि भगवान जानते हैं कि इस कलयुग में जीव भगवान को भूल जाएंगे, परंतु भगवान कभी भी अपने इन समस्त जीवों को भले वो कितने ही पतित क्यों ना हो नहीं भूलते। और अपने पास बुलाने के साधन को शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वो वेद व्यास जी का अवतार लेते हैं। वेद व्यास जी की जय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।